भाग एक, धड़कनों की मर्जी। जब इलाज के बीच रिश्ते उलझने लगे। स्थान, सिटी हॉस्पिटल। समय, दोपहर 12:15 बजे। डॉक्टर महाजन की आवाज़ में आज कुछ अजीब था, एक ऐसी सख्ती जिसमें सहानुभूति का बोझ छिपा था। रैना जैसे हर शब्द के साथ भीतर सिकुड़ती जा रही थी। रैना जी, डॉक्टर ने धीरे से कहा, सीटी स्कैन की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। मैं सीधे शब्दों में कहूं तो आपके पिताजी का हार्ट बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। क्या क्या मतलब? रैना की आवाज़ किसी टूटे हुए कांच जैसी थी। मतलब ये कि ट्रिपल वेसल डिजीज है उन्हें। दिल की तीन मुख्य धमनियां 90% से ज्यादा ब्लॉक हो चुकी हैं। स्टेंट से काम नहीं चलेगा, ओपन हार्ट सर्जरी करनी होगी। उसका शरीर सिहर गया। आप पक्के तौर पर कह रहे हैं? जी, ये रिपोर्ट्स झूठ नहीं बोलती। अगर सर्जरी एक महीने के भीतर नहीं हुई तो कार्डियक अरेस्ट का रिस्क बहुत ज़्यादा है, और ये सर्जरी बहुत डेलिकेट है, इसलिए आपको एक अच्छे कार्डियो सर्जन से करवानी होगी। हम मुंबई या दिल्ली रेफर कर सकते हैं। रैना जैसे सुनते सुनते हवा में लटक गई थी। उसके हाथों में पापा की रिपोर्ट्स थीं और आंखों में एक गहरी धुंध। और खर्चा? उसने धीरे से पूछा, जैसे ये सवाल जबान से नहीं जमीन से खींच कर लाया गया हो। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। कम से कम 50 लाख। रैना ने सिर झुका लिया। उसके कानों में डॉक्टर की बाकी बातें गूंज रही थीं, आईसीयू, कार्डियक ओटी, रिकवरी, इम्यूनोथेरेपी और तमाम मेडिकल टर्म्स, जिनका बोझ अब उसके दिल पर था। अस्पताल के कॉरिडोर, 1:05 बजे। वो तेज कदमों से वॉशरूम की तरफ चली, लेकिन अंदर जाकर खुद को संभाल नहीं सकी। वो जमीन पर बैठ गई, जैसे हड्डियों से जान ही निकल गई हो। 50 लाख, उसके होंठ बुदबुदा रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उसने पापा की ओर देखा, जो वेटिंग एरिया में चुपचाप बैठे थे, जैसे उन्हें सब पता हो, पर वो अपनी बेटी की हिम्मत को देखना चाह रहे हो। 50 लाख, और मेरे पास अभी 50,000 भी नहीं थे। रैना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कलाई पर सिर टिका लिया और गहराई से सांस लेने की कोशिश की। भगवान, ये कैसा इम्तिहान है। घर, 5:30 बजे। रैना घर लौट आई थी, लेकिन जैसे एक खोल में बंद होकर। पिता चुप थे। उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा। वो शायद बेटी की आंखों की बेचैनी में सब पड़ चुके थे। रैना अपने कमरे में गई, दरवाज़ा बंद किया और ज़मीन पर बैठ गई। उसने सारे फाइल्स, रिपोर्ट्स, बिल्स फैला दिए। एक डायरी खोली, वही पुरानी छोटी सी लाल रंग की डायरी जिसमें वो हर महीने का खर्च लिखती थी। आमदनी नील, बचा हुआ 4,870, पिता की दवाइयाँ 3,200 हर महीने, AMI 1,560, खर्च संतुलन ही नहीं रहा अब। फिर वो हिसाब जोड़ने लगी, जैसे सिर्फ जोड़ने से कोई चमत्कार हो जाएगा। 8:00 बजे, रैना की छत पर अकेलापन। छत पर चांद अधूरा था, जैसे उसका दिल। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन वो पसीने में थी, मानसिक बोझ के। उसके फ़ोन पर कई नंबर खुले थे, कुछ मेडिकल फाइनेंस कंपनियों के, कुछ NGOs के और कुछ पुरानी जान पहचान वालों के। लेकिन फिर वो रुकी। किससे कहूँ, किसके सामने हाथ फैलाऊँ? और अगर माँ जिंदा होती? उसका गला भर आया। वो जैसे किसी पुराने वक्त में लौट गई, जब पापा स्कूल के बाहर खड़े रहते थे बस उसे देखने को। अब मेरी बारी है। सुबह का दृश्य, अगला दिन, 6:00 बजे। रैना ने रात भर सोचा। अब कोई भी रास्ता आसान नहीं था। उसने एक पेपर पर 3 कॉलम बनाए। कहाँ से पैसा आ सकता है? बैंक लोन, क्राउड फंडिंग, पुराना PF निकालना, किन से मदद मांगी जा सकती है? कॉलेज की सीनियर, एक NGO वर्कर जिससे पहले बात हुई थी, वो HR जो नौकरी के लिए इंटरव्यू ले चुकी थी। कौन से रास्ते नहीं अपनाने? ब्याज पर लोन लेना, किसी को अपने जीवन के हिस्से बेच देना, इमोशनल ब्लैकमेल। लेकिन तभी एक नाम जहन में कौन था? अखिल। उसने तुरंत खुद को झटका। नहीं, अब किसी भी पुराने रिश्ते की भीख नहीं चाहिए। लेकिन सच तो ये था, वो दरवाजे अब भी कहीं खुले थे। और सबसे ज्यादा डर की बात ये थी कि अगर कोई और उसे रैना की मजबूरी पर हक जताए तो। नहीं, ये सिर्फ मेरे पापा का जीवन नहीं, मेरा आत्मसम्मान भी है। अंतिम दृश्य, दिन ढलता है। रैना का चेहरा अब कठोर है। रैना अब अपने आप से एक नई कसम ले चुकी थी। 50 लाख चाहिए और मैं लाऊंगी, चाहे जिस रास्ते से भी जाना पड़े। लेकिन अब किसी को भी ये सोचने का मौका नहीं मिलेगा कि मैं टूटी हुई हूँ। उसने अपना बैग उठाया, कंप्यूटर खोला और कुछ नए फॉर्म भरने लगी। सरकारी योजनाओं के, कुछ कॉरपोरेट हेल्थ फंड्स के और कुछ निजी स्टार्टअप्स की मेडिकल सहायता फंडिंग के। हर क्लिक के साथ वो एक नई रैना बन रही थी। लेकिन भीतर कहीं आंसू अब भी चुपके से आंखों के किनारों तक आते थे, पर अब वो गिरने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन किसी चीज़ का कोई फायदा नहीं हुआ, बस बिखर रहा था।